ओम शांति। तो अभी अभी हम सभी ने मुरली सुनी आज की। आप सभी को याद होगा क्या कहा बाबा ने आज, तुम्हारी ये लाइफ कैसी है? कैसी है लाइफ? मोस्ट वैल्यूएबल। तो क्या करना है? जब मोस्ट वैल्यूएबल है तो उसके पहले इस लाइफ में क्या करना है? कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। और उसकी विधि स्टेप बाय स्टेप बाबा बताते जाते, जितना बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा की याद, जितना हो सके बाबा की याद में रहो, तो बाबा की याद में रहेंगे तो हीरे जैसा बनते जाएंगे। तो हीरा हमारा जीवन, वैसे ही हम बाबा के बच्चे बने, हीरे जैसा बने। मुझे याद आ रहा है, बड़ी दादी से किसी ने पूछा, दादी आपका क्या पुरुषार्थ है? तो दादी ने यही कहा कि मैं अपने आप को देखती हूं कि मेरा जीवन हीरे जैसा कहां तक बना है। मैं बिल्कुल प्योर हीरा, बेदाग हीरा बनी हूं या बना हूं, ये चेकिंग की बात है। दूसरा कोई समझाएगा तो हमें थोड़ा अभिमान भी आ सकता है कि मैं बहुत पुराना हूं, समझदार हूं, हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हम खुद के टीचर बन करके खुद को समझाते हैं तो अवश्य परिवर्तन कर लेते हैं। तो आज बाबा ने कहा तुम्हें चलते फिरते है ना, क्यों बाबा कहते चलते फिरते बाबा को याद करो? आज की मुरली में उत्तर दिया हो, क्योंकि बच्चे बैठते नहीं हैं तो बाबा कहते बच्चे चलते फिरते याद करो। तो जितना हो सके बाबा की याद में रहे, इसके लिए केवल बैठने की बात नहीं है, लेकिन चलते फिरते, उठते बैठते, कर्म करते। और एक बहुत सुंदर अभ्यास, जैसे आप बैठे हैं तो इसको परिवर्तन करो। भले शरीर हमारा कुर्सी पर बैठा, सोफा पर बैठा, चारपाई पर बैठा, लेकिन हमें कहां बैठना है? अकाल तख्त पर, भ्रकुटी रूपी सिंह, जब भी बैठेंगे भ्रकुटी रूपी सिंहासन पर बैठेंगे, ये नियम बनाओ। चलेंगे, चल तो सारी दुनिया रही, हम भी चलते हैं सारा दिन, लेकिन कैसे चलेंगे? फरिश्ता बन करके चलेंगे, प्योर वाइब्रेशंस फैलाते हुए चलेंगे। बातें करेंगे तो कैसे करेंगे? बातें करते हैं ना, आत्मा देख करके बातें करेंगे। तो ये सारी प्रैक्टिस ऐसी है जो हमारे योग को सहज बना देती है। और एक अव्यक्त मुरली, वो आप पढ़िएगा 31-12-70, जिसमें अमृत वेले आंख खुलने से लेकर रात्रि सोने तक बाबा ने हर कर्म की बहुत सुंदर विधि बताई है, श्रीमत बताई है, और उस अनुसार हम अपनी दिनचर्या बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हम योग युक्त रहेंगे। अच्छा, प्रश्न में बाबा ने कहा कौन सी खबरदारी ना होने के कारण क्या होता है? हाँ, पाप कर्म हो जाता है। कौन सी खबरदारी नहीं होता, माना क्या अटेंशन नहीं रखते, कौन सी? बाबा कहते किसी को दुख नहीं देना है, और ये खबरदारी ना होने के कारण विकर्मों का बोझा, पाप कर्मों का बोझा। तो बाबा ने कहा ये खबरदारी रखनी है, और जब हम किसी को दुख देते हैं तो दुख देना माना क्या कहा बाबा ने? स्वयं को दुखी करना। एक आत्मा को देंगे दुख तो 100 लोग हमें दुख देने वाले आ जाएंगे, एक आत्मा को हम सुख देंगे तो 100 लोग हमें सुख देने वाले आ जाएंगे। किसमें फायदा है? बाबा ने एक मुरली में कहा, बच्चे बहुत सुंदर शायद 97 या 98 के अवैधवाणी में बाबा ने कहा, अंत में जब रिजल्ट आउट होगी तो ये नहीं देखा जाएगा आप कितनी सेवा कर लिया, लेकिन उसमें ये देखा जाएगा सुख कितनों को दिया। सेवा भी सुख देने की भावना, अगर उस सेवा में हमारे अंदर सुख देने की भावना नहीं है तो सेवा कैसी। तो बाबा ने कहा, तीन बातें बताई थी उसमें, जिसमें पहली बात सुख कितनों को दिया, दूसरा योग्य कितनों को बनाया, तीसरा निर्विघ्न कितना रहे। तो हमेशा सुख देने की भावना रहे। मन, बाबा ने कहा ना, मन से, वचन से, कर्म से भी किसी को दुख ना मिले, इतना अटेंशन। फिर बाबा ने कहा, 21 जन्मों का राज्य भाग पाना है तो तीन बातें, पहला पवित्र बनना है, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है, तीसरा गृहस्थ व्यवहार में रहते। बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से मुरली सुनी है, उत्तर देने में होशियार हैं, बहुत अच्छा। तो ये तीनों बातें बाबा ने बताई। अच्छा, हम वाचा तो समझते हैं कड़वा बोल दिया, कर्म से भी समझते हैं, मनसा से कैसे दुख देते हैं। बहुत सुंदर। तो जब हमारे मन में किसी के प्रति बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना, घृणा की भावना, नफरत की भावना है, तो ये क्या है, हम दुख दे भी रहे हैं और दुख ले भी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे हमेशा एक स्लोगन याद कर रखो, है ना, ना दुख देना है। खास करके गुलजार दादी जब भी क्लास कराती थी तो ये शब्द बोलती थी, ना दुख देना है और ना ही दुख। तो हमें इतना अटेंशन रहता है कि हाँ बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना है और हम देते भी नहीं हैं, लेकिन ले लेते हैं। तो ये भी रहे, लेना भी नहीं है, संकल्प चलाना, हाँ, निगेटिव संकल्प चलाना, ये क्या है, ये है दुख लेना। तो लेना भी नहीं। और बाबा ने कहा, सबसे बड़ा संन्यास कौन सा है, विकारों का संन्यास। बाबा आए हैं ज्ञान रत्नों से सिंगार करने, सिंगार करते हैं और माया क्या करती है, धूल। तो सबसे बड़ा धूल बाबा ने क्या बताया, कौन सा धूल, विकारों का धूल। इसलिए बाबा ने कहा निर्विकारी, है ना, निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी, विकार का अंश भी ना हो। और बाबा ने कहा एक निष्काम का कितना सुंदर अर्थ बताया, निष्कामी अर्थात कोई भी विकार नहीं, संपूर्ण पवित्र। और सबसे बड़ा व्रत क्या बताया, सबसे बड़ा संन्यास, यही विकारों का संन्यास ही सबसे बड़ा संन्यास। अच्छा, और आगे आइए, क्या कहा बाबा ने, कहां भी आते जाते हो तो क्या करो, सबसे पहले बाबा को याद करो। मुझे याद आ रहा है बाबा एक अव्यक्त मुरली में, बाबा की मुरली पूरी हुई, बाबा पार्टियों से मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा जब भी घर से बाहर निकलते हो, ये मंत्र आप यहां से पक्का करके जाना, बहुत काम की चीज है, मैं रोज करता हूं ये अभ्यास, माना अब हमारे घर की बात नहीं, तो जब भी मैं रूम से बाहर निकलता हूं तो ये करता हूं, तो जब भी घर से बाहर निकलते हो तो बाबा ने कहा एक मिनट के लिए बाबा को आह्वान करो। बाबा आए, विजय का तिलक लगाया, वरदान दिया, बच्चे विजयी रतन आत्मा भव, सफलता मूर्त आत्मा भव, बस आप जाइए। कितना, कुछ सेकंड लगे, है ना। तो जैसे हम घरों में अपने बड़ों से, मात पिता से हम पूछ करके जाते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ में रहता है। तो अगर हम एक सेकंड के लिए बाबा को आह्वान करके उनको याद कर लिए, विजय का तिलक लगा लिए, तो फिर हर काम में सफलता ही सफलता। फिर आगे बाबा ने कहा, बाबा से कैसा प्यार रखना है, कैसा प्यार रखना है, सच्चा प्यार, और बाकी सबसे अरे बाबा ने कहा है, हंसो नहीं, झूठा प्यार वाली बात नहीं कर रहा हूं, बाबा ने कहा है नष्टो मोहा, है ना, बाकी सबसे नष्टो मोहा, तो सच्चा प्यार, बाबा से हमारा सच्चा प्यार है तो सच्चा प्यार की निशानी क्या दिखाई देगी। हम कह तो देते हैं बाबा से हमारा दिल का प्यार है, बाबा की सिवाय हमारा और कोई नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल निशानी, बाबा से प्यार माना बाबा की मुरली से प्यार। हम अगर ये कहें मुरली सुनने की फुर्सत नहीं है, सेंटर पर जाने की फुर्सत नहीं है, तो प्यार कहेंगे, है प्यार। बाबा से प्यार माना बाबा के यज्ञ से प्यार, बाबा की सेवाओं से प्यार। हम कहें बाबा से बहुत प्यार है, बाकी अगर आपको कोई सेवा का प्रोग्राम मिलता है, बहन जी कोई सेवा का प्रोग्राम बनाते हैं, हम कहें भाई जी दीदी मेरे पास टाइम नहीं है आज, तो हा? तो है प्यार नहीं है ना। बाबा से प्यार माना ब्राह्मण परिवार से प्यार। हम कहें हमारा बाबा से बहुत प्यार है, ब्राह्मण परिवार से भी बहुत प्यार है, लेकिन ये एक आत्मा है ना, इसके मुख से तो हमेशा जहर ही निकलता है, पत्थर ही निकलता है, भगवान इससे बचाए। तो उस आत्मा को किसने चुना है, किसने चुना है, बाबा ने चुना है ना। भगवान की दृष्टि उस आत्मा के ऊपर भी तो पड़ी है। जिस आत्मा को भगवान ने चुना है, जिस आत्मा को भगवान ने पसंद किया है, और उसको हम दूर करना चाहते, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं, तो कितनी दूरियां हो गई, हम कैसे बनेंगे बाप समान। तो ये छोटी छोटी बातें प्रैक्टिकल में हम देखें, तो नष्टो मोहा, अर्थात एक बाबा के सिवाय हमारी कहीं भी बुद्धि नहीं जाए, क्योंकि अंत में कौन काम आने वाला है, सब साथ छोड़ने वाले हैं। अंत में एक बाबा, बाबा ने कहा ना, एक बाबा के सिवाय यदि और कुछ भी याद आया तो फेल, तो उसका अभ्यास लंबे काल का हो, तब अंत में एक बाबा की याद आएगी। और आगे बाबा ने क्या कहा, मुख सेवा कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, और विकर्म भी हमारे द्वारा तब होता जब हम देह भान में आते हैं। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हमसे विकर्म होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि जब देह भान में आते हैं तब नेगेटिव संकल्प चलते हैं, जब नेगेटिव संकल्प चलते हैं तो विकर्म होते हैं। आत्मवानी स्थिति में होंगे तो नेगेटिव संकल्प चलेगा ही नहीं। आप आत्मवानी स्थिति में रह के देखो और नेगेटिव संकल्प चला के देखो, चलेगा ही नहीं। आत्मा की सातों गुण वो प्रैक्टिकल इमर्ज हो जाएंगे व्यवहार में, आत्मवानी स्थिति में स्थित होते ही आपके पॉजिटिव संकल्प ही चलेंगे, तो हम विकर्मों से ऑटोमेटिक मुक्त हो जाएंगे। हम कई बार सोचते हैं कि एक तरफ हमें कितने जन्मों का विकर्म विनाश करना है, 63 जन्मों का, भाग्य कितने जन्मों का बनाना है, 21 जन्मों का, और अगर इस जन्म में छोटी मोटी भूलें होती रही, विकर्म होता रहा, तो कब हम 63 जन्मों का विकर्म विनाश करेंगे और कब हम 21 जन्मों का भाग्य बनाएंगे, सोचने की बात है। अच्छा, और आगे बाबा ने क्या कहा, किसमें थकना नहीं है, किसमें थकना नहीं है, सर्विस में। कब थक जाते हैं, जब मैंपन आता है, मेरापन आता है। एक 97 या 98 की अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं देखा मेरी इतनी सेवा किया, लेकिन हमारी दीदी हमारी एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा, क्या फायदा सेवा करने से, घर में आराम से बैठो। है ना, ये बाबा के महावाक में आपको बता रहा हूं। हाँ, हमारी टीचर बहन एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा, है ना, जो आगे पीछे घूमते हैं बस उन्हीं को ही दीदी पूछती हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे मैं तो जानता हूं ना, मेरी डिक्शनरी में पहला नंबर तुम्हारा है, इसलिए कभी भी ये नहीं सोचो कौन हमारा महिमा, हमारी महिमा नहीं, हमें कोई पूछता नहीं, कोई जानता नहीं। हाँ, दीदी जाने या बाबा जाने? अच्छा, बाबा ने, कुछ लोगों ने बोला, बाकी लोग क्या विचार है कि दीदी हमारी महिमा करे, दीदी जाने ऐसा? बाबा को तो पता है ना आप सेवा करो। तो बाबा ने कहा, एक मुरलिम बाबा ने कहा, अगर सेवा करने के उपरांत आपको जो चाहिए, क्योंकि वरदानी युग है, अगर आपको नाम मान शान चाहिए तो वो मिल जाएगा, लेकिन 21 जन्मों की प्राप्ति में, 21 जन्मों के भाग में, उससे आपका भाग कट जाएगा। तो बाबा ने कहा, अपने आप से पूछो क्या चाहिए, अल्पकाल का नाम मान शान या 21 जन्मों का भाग्य? 21 जन्मों का भाग। हम सेवा किया तो हमारी महिमा होगी, सब कुछ होगा, लेकिन हम खुद ना इतने उतावले हो जाएं कि लोग हमारी महिमा करें, या कई बार हम खुद ही अपना चालू कर देते, दूसरा नहीं करता तो हम ही करना चालू कर देते हैं, तो वो ना हो, मैंपन मेरापन ना हो। अच्छा, और आगे बाबा ने क्या कहा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत बहुत वैल्यूएबल समय। क्यों? बाबा ने कहा, संगम युग का एक एक सेकंड वर्ष के समान, इसके ऊपर चिंतन करना, संगम युग का समय कैसा है, इस समय हम क्या क्या प्राप्ति कर सकते हैं, इसके ऊपर आप खुद चिंतन करना। और बाबा ने आगे, घर घर क्या खोलना है, रूहानी हॉस्पिटल। और क्या देना है फिर हॉस्पिटल खोलकर, कौन सी दवाई? याद की दवाई, वरदान। क्या था वरदान आज का? प्रवृत्ति में रहते, लौकिकता से न्यारे रहे, परमात्म प्यारे बनने वाले, लगाओ मुक्त भाव। प्रवृत्ति को क्या समझो, सेवा स्थान है, है ना, या घर है, सेवा स्थान है ना, सेवा करने का स्थान। और आपका घर कहाँ है? मधुबन है, है ना, मधुबन है ना, मधुबन से जाने की इच्छा नहीं होती, है तो मधुबन है घर, और हमारा लौकिक स्थान जो है वो सेवा स्थान है, सेवा के लिए बाबा रखा है। प्रवृत्ति का कितना सुंदर अर्थ बताया बाबा ने, प्रवृत्ति अर्थात परवृत्ति, अर्थात मेरा नहीं बाबा का है। तो जब अपना लौकिक घर बाबा का घर समझ करके चलेंगे, जब बाबा को जिम्मेवारी दे देंगे, जब बाबा को आप मुखिया बना देंगे, जब बाबा को मालिक बना देंगे, तो आपका घर कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? जिस घर का मालिक, जिस घर का मुखिया भगवान बन गया, तो वो घर कैसा हो जाएगा? स्वर्ग जैसा हो जाएगा, उस घर में आनंद खुशी है ना। तो यदि आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो क्या करना, मैं मालिक हूं ये नहीं, लेकिन कौन मालिक है? बाबा मालिक है, और सब कुछ है, ये घर बाबा का घर, बच्चे किसके, धन दौलत किसका? अच्छा, बाबा का कहने के बाद फिर अपना ये मेरा मेरा फिर नहीं कहना नहीं तो बाबा कहते फिर ठगी हो जाएगा, कहें बाबा का और फिर करे मेरा मेरा, तो तेरा मेरा कुछ भी नहीं। जब ये भावना आती, मेरा कुछ भी नहीं, तो बाबा भी कहते सब कुछ तेरा, क्योंकि मेरापन ही बोझ लाता है, मेरापन ही दुख का कारण है, मेरापन ही मैला बनाता है, मेरापन ही है ना अनेक समस्याओं का घेरा है। इसलिए बाबा ने कहा, तेरा कह करके बिल्कुल हल्के रहो, निश्चिंत रहो और उड़ते रहो। और स्लोगन में बाबा ने क्या कहा, बड़े होशियार हैं, आपने सारी मुरली याद करके रखी है, अच्छी बात है। हाँ बहुत बढ़िया। तो सर्व खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहने वाले के सामने परिस्थितियां आएगी और तो इसके ऊपर आप चिंतन करना, बाबा ने हमें कौन कौन से खजाने दिए हैं, कितने प्रकार के खजाने दिए हैं, है ना। दुनिया में जरा भी कोई सहयोग करता है, मदद करता है, तो हम क्या कहते हैं, आपने हमें समय पर मदद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। अब हम सोचे बाबा ने हमें क्या दिया है, और वो भी अविनाशी खजाने जो पूरे 5000 वर्ष तक चलने वाले हैं। तो दिल से कहना है, क्या कहना है, बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत, है ना। तो ये रोज बाबा को थैंक्स देना दिल से, है ना। तो हमारी यही सद्भावना है कि आप सदा सर्व खजानों से भरपूर रहें, संतुष्ट रहें, लगाव मुक्त रहें, लौकिकता से न्यारे रहें, नष्टो मोहा बन करके रहें, बहुत मीठा बन करके रहें, सुखदाई बन करके रहें, और जितना हो सके बाबा की याद में रहें। इन्हीं सद्भावना के साथ ओम शांति।